आयत नंबर 163। आइए किस्सा सुनते हैं, पूरा स्टोरी की तरह सुनेंगे, फिर इसमें से कुछ चीज़ें इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी। वसल हुमन अल्करियतिल्लती कानत हादिरतल बहर, और ज़रा इनसे इस बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक़ थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़ा कि वहाँ के लोग सब यानी हफ्ते के दिन अहकाम इलाही के ख़िलाफ़ वर्जी करते थे, और ये कि मछलियाँ सब थी के दिन उभर उभर कर सतह पर इनके सामने आती थीं और सब के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थीं। ये इसलिए होता था कि हम इनकी नाफरमानियों की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे। और इन्हें यह भी याद दिलाओ जब इनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो कि जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला। तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माजरत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इस नाफरमानी से परहेज़ करने लगें। आखिरकार जब वो इन हिदायात को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो इन्हें याद कराई गई थी, तो हमने इन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे, और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा बंदर हो जाओ जलील व ख्वार। यहाँ वो वाक़ जिसको वाक़ सब्त मछलियों वाला वाक़ कहते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में ये वाक़ पेश हुआ। एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे आबाद थी, वहाँ के लोगों का काम मछलियाँ पकड़ना था। बड़ी तवज्जो से सुनिए क्योंकि इस पारे का थीम माली बेकायदगी है ना। पहले कौम शुएब की जिरा और तादील थी, यहाँ भी इस कौम का एक गुज़र है। अब होता क्या था कि इस कौम की गुज़र बसर चुके मछलियाँ पकड़ने पर होती थी। अल्लाह ताला ने पिछली कौमों पे एक हॉलीडे रखा था। हमारे यहाँ तो हॉलीडे के साथ छुट्टी का तस्वर आता है ना, हॉलीडे, वो समय हॉली नहीं होता, हॉलीडे। एक दिन तो इबादत करो, सारा हफ्ता जो कमाते हो खाते हो तो एक दिन करो। तो बनी इसराइल ने हफ्ते का दिन चूज़ किया था। इनके लिए उस दिन किसी किस्म का काम धंधा करना बिल्कुल जायज़ नहीं था। अल्लाह ने आजमाना चाहा, जिस दिन मछलियाँ नहीं पकड़नी उस दिन इतनी मछलियाँ आती कि दरिया के बाहर बाहर गिर रही होती। चलिए अब एक कुछ साल कुछ अरसा सब्र किया लेकिन मुँह में पानी आता था, और बाकी सारा हफ्ता जाल लगाए बैठते, कभी कोई मछली फंसती कभी ना फंसती। अब क्या हुआ, कुछ लोगों की राल टपकी, कहने लगे कोई बात नहीं, हम नहीं पकड़ेंगे हफ्ते को मछलियाँ, जुमे की रात को जाकर दरिया के किनारे जाल लगा के आ जाते। सारा दिन जो हफ्ते के दिन खूब मछलियाँ आती वो जाल में फंसती रहती, इंतज़ार करते सूरज जाए, इतवार का दिन शुरू होता है तो जाके वो जाल निकाल लाते, मछलियों से भरा होता। अब जब लोगों को मछली की खुशबू आती, कहते ये कहाँ से आई, कहते नहीं नहीं हमने कुछ नहीं किया हफ्ते को, जाल जुमे को लगाया था और पकड़ी इतवार को है, ये था हीला। देखिए इन्होंने शराब नहीं बेची, जुआ नहीं खेला, गैम्बलिंग नहीं, लॉटो नहीं थी इनकी, ये कोई अल्लाह की हराम करदा चीज़ें नहीं बेच रहे थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह के हुक्म की तावील की। ये है असल में जुर्म, इन्होंने अल्लाह का हुक्म बदला, अल्लाह ने इनकी शक्लें बदल दी। तीन गिरोह हो गए, कुछ ने ये किया, दूसरों ने इनको समझाया कि ना करो, तीसरा गिरोह चुप पीस में कर, नहीं 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 बुरे नहीं बनते, अपनी मर्जी है करो ना करो। अल्लाह की पकड़ ऐसी आई कि एक दिन सुबह जब उठे वो कौम जो मना करती थी ना वो ठीक थे, बाकी दोनों शक की शक्लें बंदर की बन चुकी थी। अल्लाह ने ये बहुत बड़ी एक बात आपके मेरे लिए रखी है, और वो क्या, अल्लाह के हुक्म की शक्ल बदल देना ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए, ये बदतरीन जुर्म है। और देखिए अल्लाह करे ही तान हो, मछलियाँ थी उन्हीं की, मिल जानी थी उनको हलाल से, हराम से ले ली। यहाँ एक असूल समझिएगा, खुलासा बता रही हूँ आपको, रिस्क आपका मेरा मुकर्रर है, सोर्स ऑफ इनकम हम चूज़ करते हैं, रिस्क का ज़रिया बंदा चूज़ करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहीं जा रहे थे, हाथ में एक भारी ज़िरा थी, वो जो शील्ड सी होती है, कज़ाए हाजत के लिए जाना था। राह से आते हुए एक शख्स को देखा, कहा ज़रा थोड़ी देर ये मेरी ज़िरा पकड़ के खड़े होना, मैं फ़ारिग होकर आता हूँ। उसने कहा ठीक है, चले गए। वहाँ गए खुश थे कि इसकी वजह से मेरे लिए सहूलत हो गई, दिल में क्या सोचते हैं अभी वापस जाऊँगा ना तो इसको 4 दिरहम इनाम में दे दूँगा, ऐसे ही बंदा किसी को खुश होकर देता। फारिग होकर वापस आए, ना वो बंदा और ना वो ज़िरा। अब किधर क्या देखा, पास ही कोई दुकान थी, पूछा इधर कोई आदमी नहीं देखा, उसके पास ज़िरा थी। कहा अच्छा एक बंदा आया, एक आदमी अभी मेरे पास एक ज़िरा बेच के गया। कहा कौन सी, देखा तो वही ज़िरा थी। कहा कितने की बेच गया, कहा 4 दिरहम की बेच गया। हज़रत अली ने कहा ये 4 दिरहम तो मैं उसको दे ही देता लेकिन उसने हराम से ले लिए। इस असूल को समझिए। इसी तरह एक हदीस में आता है कि रिस्क इंसान को मौत की तरह ढूंढता है। अगर हमारे भाई हमारे मर्द इस असूल को समझ जाए ना, आपका रिस्क आपको ही मिलना है, तो यकीन कीजिए कभी हराम की तरफ कोई मुंह भी ना डाले। फिर दूसरी बात है कि जिस दिन मछलियां नहीं पकड़नी थी उस दिन मछलियों की क्या कैफियत थी, शुर्रान। इस शुर्रान को देखने के लिए एक वीडियो देखते हैं। ये एक दुनिया की जगह है जहाँ इतनी मछलियाँ होती हैं कि समंदर में उछलती पड़ती हैं। मैं जब भी इस वीडियो को देखती हूँ मुझे यही आयत याद आती है, किसी भी माशरे में हराम के ज़राए का उभर उभर के आना ये बहुत बड़ी आजमाइश होती है। क्योंकि जब भी लफ्ज़ शुर्रान सुनते थे ना, समझ नहीं आती थी कि ये कैसे होगा। अब आप सोचिए, ये मछली पकड़नी हराम है और मछलियाँ उछल के खुद गोद में गिर रही हैं, ये देखिए। चलिए अब यहाँ सोचिए, अल्लाह की नाफरमानी की चीज़ों को बेचना और उनको ख़रीदना, ये अल्लाह की ही पकड़ को अपने लिए साबित करना है। याद रखिए, जिस माशरे से अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर चला जाता है ना, वहाँ यही होता है। हराम मुंह खोल के खड़ा होता है, कोई काम ही नहीं हो सकता रिश्वत के बगैर। पैसे दो काम करा लो, नहीं करेंगे काम पैसे नहीं तुम दे रहे। जिन चीज़ों में कशिश होती है ना, उसी में आजमाइश आती है। हम अपने लिए ये दुआ करते हैं कि अल्लाह तू हमें ऐसी चीज़ों से महफूज रख। बुराई से रोकना और भलाई का हुक्म देना ये फ़र्ज़ है। सही मुस्लिम की रिवायत है कि तुम में से जो बुराई को देखे उसको हाथ से रोके, हाथ से नहीं तो ज़ुबान से, ज़ुबान से नहीं तो दिल में बुरा जाने। वज़ालिक अदफ़ुल ईमान, ये ईमान का सबसे हल्का दर्जा है। अल्लाह ताला आपके मेरे लिए इस्लाह फरमा दे। और ये दुआ करते हैं हम लोग कि अल्लाह सुबहान तआला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बराह रास्त हम ख़वातीन का माली मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होता, फिर भी हमें पता होता है कि घर में कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। अगर मियाँ की तनख्वाह 20,000 है तो 25,000 का सेट कहाँ से आ गया। हर माँ बहन का फ़र्ज़ है जब उसका शौहर या बेटा या भाई कोई ऐसा तोहफ़ा ले आता है जो उसकी तनख्वाह से भी ज़्यादा है तो पूछे क्यों। हमने नस्लें पैदा करनी हैं, वो वाली जो मुसलमान हों और अपने इस्लाम पर फ़ख्र करें। इमाम बुखारी की माँ, और इसी तरह से मैंने अलामा इकबाल के बारे में पढ़ा कि उनकी माँ ने अलामा इकबाल को उस बकरी के दूध पर पाला जो खुद पाली हुई थी। क्यों? क्योंकि इनके वालिद अंग्रेज़ के ग़ुलाम थे। उस दौर में अंग्रेज़ का दौर था, जैसे आज नॉन मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले बहुत सारी इंग्लिश कंपनीज में काम करते हैं। तो उनकी माँ के बकौल अंग्रेज़ जो उस वक़्त मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहा था उसकी नौकरी जायज़ नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे के पेट में ऐसा खाना नहीं डालूंगी। बकरी का दूध धोती, उसको बेचती और उससे अपने बच्चे की परवरिश करती। तो फिर औलादें वही होती हैं ना जिनके सीने में कुरान होता है। अल्लाह ताला हमें अपने पेट के अंदर आने वाले लुकमों की फ़िक्र लगा दे। चंद आयतों की तिलावत।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون।
फिर आगे क़यामत तक का एक वादा, आयत 167। और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो इनको बदतरीन अजाब देंगे, यकीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में तेज़ है और यकीनन वो दरगुजर करने वाला और रहम से भी काम लेने वाला है। देखिए, माजी में जो कुछ हुआ ना वो तो कुरान में है, मुस्तकबिल की भी खबरें हैं। और एक एक बात मनोअन सच हो गई। हमने इनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इनमें से नेक थे और कुछ इसमें इससे मुख्तलिफ, और हम इनको अच्छे और बुरे हालात से आजमाइश में मुबतला करते रहे। तीसरी दफ़ा जिक्र है इस बारे में, अच्छी आजमाइशें बुरी आजमाइशें। बुरी आजमाइश को हम बहुत जल्दी समझ जाते हैं, अच्छी चीज़ को आजमाइश नहीं समझते। बस आप देखिए कि औलाद भी आजमाइश है, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा। अब अगर किसी के बच्चा हो और आप जाकर कह दें अच्छा अल्लाह आपको इस आजमाइश में पूरा उतारे, तो नाराज़ हो जाएंगे। वो कहेंगे क्या मतलब है ये आजमाइश है। तो याद रखिए, जब किसी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल ना करें तो वो हमारे लिए बबाल बन जाती है। और क्यों? ताकि वो पलट आए। ये पलट आने वाली बात याद रख लीजिए, हर तकलीफ़ और मुसीबत आपकी उस्ताद बन जाती है। शर्त एक है कि आप उससे सबक सीख लें। اور اگر منافق کی طرح پتہ ہی نہیں کہ بوجھ خوش ہو کے لادا ہے مالک نے یا ناراض ہو کے، تو پھر یہ اور بات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے رہے. یہ رشوت سے متعلق آیت ہے. گناہ کرتے جانا اور کہتے جانا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے، آج امت مسلمہ کا کچھ یہی رویہ دکھتا ہے. غور سے سنیے گا اس کو دوبارہ. پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا دنی کے فائدے سمیٹتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ہائی لائٹ کرنا چاہیے نا لفظ، تو اس میں ان کے الفاظ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھ دیے، ان قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا. آج ہم اردو میں نہیں کہتے اللہ معاف کرنے والا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا کہنے سے بات نہیں بنے گی، بلکہ یہ کر کے دکھانا پڑے گا. سیغفرو لنا کہتے تھے، اور پھر دوبارہ کیا ہوتا؟ اور اگر وہی متائیں دنیا ہم پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. آخرت کی قیام گاہ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بھی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی، یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کی رحمت کو لانے والے کام، نمازوں کی پابندی اور نیکیاں. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اسی طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی سے تھامو. دوسری بار خذوا ما آتیتکم بقوۃ، یعنی اس کتاب کو سنجیدگی سے لو، لیسٹ پرائیورٹی نہ بناؤ. آج ہمارا کیا حال ہے؟ جب کچھ نہیں چلو چلے جائیں گے سننے، آج یہ مسئلہ، کل یہ مجبوری، پرسوں یہ، اور ذرا کوئی زیادہ کہے تو کہتے ہیں ان کو ہماری مجبوریاں ہی نہیں پتہ. اللہ کہتے ہیں نہیں، مضبوطی سے تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. اور اے نبی، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا، ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہنے لگ جاؤ کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی تھی، ہم تو بعد میں پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں. یہ آیت 172 وعدہ الست سے متعلق ہے. آپ کو مجھے نہیں یاد، لیکن اللہ نے ہماری روحوں سے لیا تھا اور ہماری میموری میں فیڈ کر دیا. یہ وعدہ ہے جو ہر انسان کو مسلمان بننے کی دعوت دیتا، اور اسی وعدے کی بنیاد پہ لوگوں نے آج کثرت سے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا. یہ عہد ہماری فطرت میں گندا ہوا ہے، اور یہی تھا وہ عہد جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے انی عبد اللہ. بہت سارے لوگ اس بات سے آگاہ نہیں ہوتے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ بائی برتھ ہر بچہ مسلمان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عہد کے کو یاد رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے والا بنا دے. اب آگے ایک کردار ہے انتہائی بھیانک، اور اگر آپ کا پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، علم کی دنیا کے راہی ہیں، تو لرستے ہوئے دل سے سنیے اس کو. سب سے پہلے تو مجھے ہی خوف کھانا چاہیے. اصل میں یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے علم دیا تھا، کتاب بھی دی تھی. کسی کو اللہ علم اور کتاب دے دے دنیا میں، اس سے زیادہ قابل رشک اور خوش قسمت کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، دو لوگ قابل رشک ہیں، ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا مال اللہ کے راستوں میں لوٹاتا ہے، اور دوسرا جس کو علم اور حکمت دیا اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فیض دیتا ہے. بس یہ دو ہے، لا حسد الا فی اثنتین. یہ شخص دوسرے میں سے تھا، کتاب بھی دی علم بھی دی. لیکن یاد رکھیے، اس قرآن کو پڑھنا اور پڑھانا آپ کو شیطان پروف نہیں کر دیتا، پھر ورنہ دنیا میں آج علم کے نام پہ اتنے بھٹکے ہوئے لوگ نہ ہوتے. اس کو شیطان نے اتنا بہکایا کہ علم کے باوجود گمراہ ہو گیا. کیسے؟ دیکھیے، اور حب دنیا کی یہ بدترین مثال ہے. اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے سامنے اس شخص کا حال پیش کیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم دیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. یہ ہائی لائٹ کریں. بہت سارے لوگ پابندیاں نہیں برداشت کرتے. علم کی محفل کا سکون اور خوشی سب کو اچھی لگتی ہے, روحانیت ہوتی ہے, تسکین ہوتی ہے, فرشتوں کے پروں میں ہوتا ہے, لیکن بہت سارے لوگ صرف پابندیوں کے ڈر سے نہیں آتے. ہائے پھر چپ رہنا پڑے گا, ہل نہیں سکتے, فون بند ہو جائے گا, پھر آگے تو وقت سے پہلے جا نہیں سکتے. حالانکہ آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں, پابندی برداشت کیے بغیر تربیت ہوتی نہیں ہے. اس وقت آپ میرے ساتھ سن رہے ہیں نا, تقریباً ہمیں بات کرتے سنتے ہوئے اللہ کی توفیق سے 2 گھنٹے ہو رہے ہیں. جتنی دیر سے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو سن رہے ہیں, اور اس وقت ماشاءاللہ گھروں سے بھی بے شمار لوگ سن رہے ہیں, وہ اپنا ماحول خود بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, تبھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو یہاں بنا بنایا ماحول مل رہا ہے. یہاں آپ کے بیٹھ کر سننے اور خود سے سننے میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ پورا ماحول آپ کی تربیت کر رہا ہے, اور اسی سے پھر سیلف کنٹرول آتا ہے, پھر اسی سے تربیت آتی ہے. جو کبھی کسی کلاس میں بیٹھا ہی نہیں ہے اور ادھر ادھر سے سن سنا کے پڑھ گیا. میں اس کی ایک مثال اکثر دیتی ہوں, خودرو پودا. سڑک کے کنارے ایک جڑی بوٹی ہے کانٹوں سے بھری ہوئی, کیا کرے گی؟ جو گزرے گا نا اس کے کپڑے پھاڑے گی, الجھے گی, کپڑے نوچے گی. اس کے برعکس ایک باغ میں درخت لگے ہوئے بڑے خوبصورت, مالی اس کو دیکھتا ہے, کبھی ٹرم کرتا ہے, کبھی کاٹتا ہے, کبھی پانی دیتا ہے, کبھی اس کی کھٹائی کرتا ہے. وہ باغ خوبصورت باغ ہے, وہ انسانیت کو تسکین دے گا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی استاد کے ہاتھ لگنے کے بعد علم کی دنیا میں آتے ہیں. آرگنائزڈ, چینلائزڈ, کیا بولنا ہے, کیا نہیں بولنا, کب بولنا ہے, کب نہیں بولنا, کتنا بولنا ہے, کہاں چپ رہنا ہے, کیسے چلنا ہے, کیسے بولنا ہے, خود سے نہیں آتا. اس کے برعکس جو خود کتابیں پڑھ کے, ریکارڈنگ سن کے, ادھر ادھر سے کچھ لے دے کر پڑھنے پڑھانے بھی لگ جاتے ہیں, وہ بہت نقصان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان, وہ بات سچ ہے. کئی وہ لوگ علم کی دنیا میں اس وقت سرو کر رہے ہیں جن کو بھی خود بھی علم لینے کی ضرورت ہے. اور خود کیوں نہیں لے سکتے؟ اس کا وجہ ادھر لکھی ہے, وہ پابندیوں سے نکل بھاگا. آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورت کہف میں, اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. اگر آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ چکے نا کل, آپ کبھی اپنے ساتھ لوگوں کو نہیں پڑھا سکتے اس طرح جس طرح پڑھانے کا حق ہے. یہی تو وجہ آج علم ہے, تزکیہ کوئی نہیں, تربیت کوئی نہیں, آرگنائزیشن کوئی نہیں. تو یہ شخص علم کا بوجھ نہیں برداشت کر سکا, آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا. یاد رکھیے, جو رولز کو فالو نہیں کرتا وہ شیطان کا ترنے والا ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو رہا. اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے. اس کو ہائی لائٹ کریں. اللہ کے نبی کی حدیث یاد آ گئی, العلم علم اپنے صاحب کی شان بڑھاتا ہے. علم لینے کے دن ہیومیلیشن کے ہوتے ہیں, عاجزی کے, جھکاؤ کے. ہر بات پہ تو ڈانٹ پڑتی ہے, استاد کی بات ماننی پڑتی ہے, سیدھے بیٹھ جائیں, ٹیک چھوڑ دیں, لکھیے, ایسے کریے, سیل فون بند کر دیں. لینے کے دن بڑی عاجزی کے ہوتے ہیں, لیکن جب لیتے 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 آپ بالکل, وہ کہنا چاہیے کہ ایک خوبصورت ماسٹر پیس بن چکے ہوتے ہیں نا, یہ علم آپ کو عزت دلوانا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا صبر کر لیتا نا, اسی علم کی وجہ سے اس کو دنیا کی بھی عزت مل جاتی اور وہ سب مل جاتا جو لینے کے لیے اس نے علم کا پھندا گلے سے اتار دیا. مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنا کیا؟ خواہش پرست ہونا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑ گیا. اور خواہشیں تو یہی ہیں نا, بطن اور فرج, ایٹ ڈرنک بی میری. لہٰذا اس کی حالت کتے کسی ہو گئی. کتا کیا ہے؟ ہرس, گریڈ. اور آج تو کتا کلچر ہے. جب گوروں نے کتے گھروں میں رکھے, ہمارے بھی گھروں میں کتوں کی شکلیں آ گئیں. آج دنیا میں ڈاگ شوز ہوتے ہیں, اپنے کتے سے ملتی ہوئی اپنی تصویر بناؤ. جس کی سب سے زیادہ سملر ہوئی وہ جیتا. یہ کمپٹیشن دنیا میں عام ہے. جیپنیز پرائم منسٹر کی شکل سے ملتا ہوا کتا لے آؤ تو جیت جاؤ گے. ان کے لیے تو کتا بہت بڑی چیز ہے, وہ تو اس کو ڈائمنڈ کی رنگ پہنا کے ریڈ کشن پہ بٹھاتے ہیں. تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو یاد رکھیے, کتا کتا ہے, بہت اچھا ہے, لیکن جب انسان کتا بنتا ہے نا تو پھر وہ انسان بھی نہیں رہتا. فرمایا, تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے, اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے. یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. تم یہ ایک آیت ان کو سناتے رہو, شاید وہ کچھ غور و فکر کریں. کیا پتہ چلا, بطن اور فرج کے تقاضے پورے کرنے والے ان آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. آج پوری دنیا صرف ان 2 خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے, یا لو رومانس, فرج, یا کھا لو, ایٹ ڈرنک, کھاؤ, موج کرو. آپ دیکھیں جتنا اس وقت کھانے پینے کا رجحان ہے دنیا میں پہلے نہیں تھا, اور جتنا آج سیکس ओरल सेक्स और कहीं होमोसेक्सुअलिटी और कहीं लिविंग टुगेदर, ये सब गंदगी सिर्फ फ़र्ज के तकाजे हैं। ऐसे लोग बामकसद नहीं होते। हमारी यूथ को भी अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अल्लाह ने हलाल का हर रास्ता खोला हुआ है, लेकिन हराम के रास्तों में पढ़कर अपनी हया को पामाल करना, ये याद रखिए दुरुस्त नहीं है। अल्लाह सुब्हान तआला आपके ऊपर और मेरे ऊपर रहम फरमाए। फरमाया बड़ी ही बुरी मिसाल ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुटलाया और वो आप अपने ऊपर तक जुल्म करते रहे। जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वही राह रास्त पाता है। अपने और अपनी नस्लों के लिए दुआ करें। अल्लाह हम सबको हिदायत दे दे, तो हमारी हिदायत का फैसला कर दे, और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद हो कर रहता है। यहाँ देखिए नफ्स की शरारतों की बात है ना, ये नफ्स बड़ा पुराना है। वो कहते हैं ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी बरसों में नमाजी बन ना सका। नफ्स है मेरा आपका सबसे बड़ा दुश्मन। अल्लाह के नबी की एक तवील रिवायत है इब्ने मसूद से, जिसमें आपने अल्लाह की हमदो सना की और हिदायत की तलब की और साथ ही फरमाया कि हम अपने नफ्स की शरारतों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं और अपने अमाल की बुराइयों से, और जिसे अल्लाह राह दिखा दे उसको कोई बहका नहीं सकता और जिसको अल्लाह गुमराह कर दे उसको कोई राह रास्त पर नहीं लाता। यह अबू दाऊद की रिवायत है। तो सुबह शाम की दुआओं में भी ये दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन शुरूरी अनफुसीना मांगा करें। अपने बच्चों को शुरू से सिखा दें तो इंशाल्लाह उनका नफ्स जो है ना दबता जाएगा। 13वें पारे के शुरू में हम थोड़ी सी नफ्स पे बात करेंगे। आज जो कल्चर है ना, प्रवोक करो, तुम तुम्हारी शान, तुम बड़े, तुम्हारा ये वो। इसी तरह आपको कहते हैं कि कुछ स्कूलों में बच्चे जब जाते हैं ना तो डे वन पे या शुरू के दिनों में बच्चे को क्या सिखाते हैं, एक फ़ोन नंबर सिखाते हैं। ये बाहर की बात बता रही हूँ और गवाही मौजूद है जिन्होंने मुझे ये बात बताई, किसी डे केयर में काम करती हैं। बच्चे को आने के बाद डे केयर में सबसे पहले एक फ़ोन नंबर याद करवाते हैं, जिसको बारनेवान या बच्चों की पुलिस कहते हैं। बेटा मामा ने कुछ कहा तो इस फ़ोन पे कॉल करना, बाबा ने हाथ लगाया तो इस पे कॉल करना। और यकीन करें बच्चे के हाथ पे कोई मार्कर का निशान अगले दिन मिल जाए ना तो पुलिस ले जाती है कि अब्बू ने मारा तो मामा ने मारा। आप तो इतने फितनों से बचे हुए सिक्योर्ड लोग हैं, शुक्र करें इस पे अल्लाह का। अल्लाह इसकी परछाइयाँ भी हमारे इस मुल्क में ना डाले। लेकिन याद रखिए इस नफ्स को मोटा करने का हर इंतज़ाम आज मौजूद है। इसलिए क्या करें, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अपने आप को मिटाना ही पड़ेगा। और आज हमारी यूथ की गर्दन थोड़ी सी अकड़ी हुई है, क्यों? इसलिए कि हस्ती नहीं मिटने देती। अल्लाह हमारे ऊपर रहम कर दे। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम के लिए पैदा किया, इनके पास दिल हैं मगर वो इनसे सोचते नहीं। सोचिए, यहाँ से पता चलता है कि सोचने का काम दिमाग नहीं, दिल करता है। इनके पास आँखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं, इनके पास कान हैं मगर वो इनसे सुनते नहीं। वो जानवरों की तरह हैं, बल्कि इनसे भी गए गुजरे। ये वो लोग हैं जो गफलत में खोए गए हैं। क्या पता चला, जब इंसान बंदगी के रास्ते को छोड़कर नाफरमानी के रास्तों पे चला जाता है ना तो उसकी कुछ निशानी है। दिल सोचता नहीं, आंखें देखती नहीं, कान सुनते नहीं, और वो चौपायों की तरह है। क्या पता चला, हक नहीं देखते, हक नहीं सुनते। गलत चीज़ें तो बहुत हैं। सवाल पैदा होता है कि इंसान को जानवर से क्यों रिलेट किया गया, चौपाए, कैटल्स, अनाम। तो पहली बात एक है कि इंसान को अल्लाह ने अकल दी है लेकिन फिर भी नाफरमानी करता है। दूसरी बात है कि जानवर भी अपनी फितरत पर है। बकरी भूखी मर जाएगी, गोश्त नहीं खाएगी, क्योंकि उसकी शरीयत में गोश्त हराम है। शेर भूखा मर जाएगा, कभी चारा नहीं खाएगा, क्योंकि उसकी शरीयत में चारा हराम है। लेकिन इंसान क्यों जानवरों से बदतर है कि वो हलाल हराम का फ़र्क खो देता है और सब कुछ खा लेता है। फिर इसी तरह देखिए, जानवर चलते फिरते खाता है। इंसान को भी अदब और तहजीब के साथ बैठकर खाना चाहिए। आज चलते फिरते खाना क्या है, एक हाथ में कोक, एक में ड्रिंक, एक हाथ में बर्गर, ये क्या है? दोनों हाथों से खाना गलत है। इस्लाम कहता है दाएं हाथ से खाओ। फिर इसी तरह देखिए कि जानवर कम से कम अपने मालिक का वफ़ादार तो है ना, इंसान तो अपने रब का भी वफ़ादार नहीं होता। लिहाजा कल अनाम, अल्लाह हमें ऐसी चीज़ों से महफूज रखे। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला की कदर करवाई जा रही है। फरमाया अल्लाह अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। और इन लोगों को छोड़ दो जिसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं। जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हक के मुताबिक हिदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है। बात क्या है कि हक की बात कीजिए, अगर आपने मैंने हक बात नहीं देखी सुनी समझी, हमने अपने दिल दिमाग का हक अदा नहीं किया, क्योंकि अहले नज़र ज़ौके नज़र खूब है, लेकिन जो शय की हकीकत को ना देखे वो नज़र क्या है। यानी आंखें बड़ी अच्छी हैं, खूबसूरत है, लेकिन आंखों से हक नहीं दिखता तो इन आंखों का क्या फ़ायदा होगा। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयात को झुटला दिया, तो हम इन्हें बतदरीज ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें खबर तक न होगी। मैं इनको ढील दे रहा हूँ, मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं। अल्लाह ताला अचानक पकड़ता है, और जहाँ से गुमान भी नहीं होता ना वहाँ से पकड़ता है। और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं? वो तो एक ख़बरदार है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ मुतनब्बिह कर रहा है। क्या इन लोगों ने आसमान और ज़मीन के इंतज़ाम पर कभी गौर नहीं किया? और किसी चीज़ को भी जो अल्लाह ने पैदा की है आंखें खोल कर नहीं देखा? और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत ज़िंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो? फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएंगे? जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, इसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी में भटकता हुआ छोड़ देता है। अल्लाह हमें भटकने से बचा ले। शायर के लफ्ज़ सुनिए और एक एक लफ्ज़ सच की गवाही देते हैं। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना। सच क्या करना उस तालीम को जो खुदा से दूर कर दे? इमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। नहीं, बाज़ दफ़ा इंसान अल्लाह अकबर का नारा भी लगा रहा होता है लेकिन फिरके और तफरके फैला रहा होता है, तो क्या पता चला हक की तलब रखनी है और उसकी ख्वाहिश रखनी है। अब सूरत के खात्मे की तरफ माइल हैं आयते। ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर वो क़्यामत की घड़ी कब नाजिल होगी? कहो इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, इसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों ज़मीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगी। सोचिए यहाँ बैठे बैठे अगर छतें हिलने लगे, पानी आ जाए, ये शेंगलर्स खूब ज़ोर से बजने लगे, ऐसी अचानक एक दिन भी क़्यामत आएगी। ये लोग इसके मतलब तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम इसकी खोज में लगे हुए हो। कहो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से नावाकिफ हैं। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो मैं अपनी ज़ात के लिए किसी नफ़े और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फ़ायदे अपने लिए हासिल कर लेता और मुझे कभी कोई नुकसान ना पहुँचता। मैं तो महज एक ख़बरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूँ इन लोगों के लिए जो मेरी बात माने। इसका नंबर नोट कर लें, बाद में जाके देखिए कि नबी अपने बारे में क्या कहते हैं और आज उम्मत उनके बारे में क्या कहती है। अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमा दे। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और इसी की जिन से इसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। इसको हाईलाइट करे, बीवी का दूसरा नाम सुकून देने वाली मशीन। हर लिहाज से बीवी अपने शोहर को सुकून देती और दे। खाना खिलाएगी, मैदे को सुकून, खुशनुमा लगेगी, उसकी आंखों को सुकून, उसकी ज़रूरत पूरी करके उसके जज्बात को सुकून देगी। और जो बीवी सुकून नहीं देती, वो जो मर्ज़ी कर ले, वो कभी भी अच्छी बीवी नहीं बन सकती। फिर जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो इसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लिए वो चलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह अपने रब से दुआ की कि अगर तूने हमको एक अच्छा सा बच्चा दिया तो हम तेरे शुक्रगुजार होंगे। मगर जब अल्लाह ने इनको सही सालम बच्चा दे दिया तो वे इसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। अल्लाह बहुत बुलंद व बरतर है इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि इनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी भी चीज़ को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं। आप ही में से किसी की शहादत, आज ही बल्कि सुबह गाड़ी में बात हो रही थी, हम दूर ऊपर पहाड़ों पे गए हुए थे और थोड़ी थोड़ी जगह दूर जगह पे ना किसी बुज़ुर्ग का नाम लिखा हुआ था, कतबे लगे हुए थे। तो जो रहने वाले लोग हैं वो बता रहे थे कि ये आप जो नाम पढ़े हैं ना ये इन लोगों के मशहूर बुज़ुर्गों के हैं, और इनका क्या ख्याल है कि ये पहाड़ी निज़ाम इन बुज़ुर्गों ने संभाला हुआ है। और उसमें एक बात ये बताई कि जो भी बच्चे इधर आपको मिलेंगे उनमें से अक्सर के नाम के साथ पीरा दिता। पहले एक नाम आप बहुत सुनते थे, अल्लाह दिता, हम सब के भी कोई मुलाजिम होंगे अल्लाह देता, तो उन्होंने बताया कि इतनी जहालत है इन गांवों में कि लोग बच्चों के नाम पीरां देता, क्या मतलब है पीरों ने दिया, ये बिल्कुल ही शायद का तर्जुमा है। जब बच्चा हो जाता है उसको अल्लाह के माँ के माँ सिवा के नाम लगाते हैं, वो पीरां देता कहते हैं। आज लोग बेबी शावर मनाते हैं और कुछ ना कुछ करते हैं, कितनी ज़रूरत है इंसानियत को अल्लाह का पैगाम देने की, अल्लाह हमसे ये खिदमत ले ले। फरमाया और पुकारते भी किन को हैं जो ना इनकी मदद कर सकते हैं ना अपनी मदद पर कादिर हैं, अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए, तुम ख्वाह इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसां ही रहे। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन्हें पुकारते वो तो महज बंदे हैं जैसे तुम बंदे हो। देखिए कितना वाज़ेह अकीदा है कुरान का, इंसानों को खुदाई के मर्तबे पे फाइज करते हो, हालांकि इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सच्चे हैं। सुबह से शाम तक किसी कब्र पे खड़ा होकर इंसान पुकारता रहे, कभी अंदर से जवाब नहीं आएगा। सिर्फ शिर्क है जो बंदे की मत मार के फिर भी उसको वहाँ खड़ा करता है। क्या ये पाँव रखते हैं कि इनसे चलें? क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़ें? क्या ये आँखें रखते हैं कि इनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि इनसे सुने? ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो कि बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। देखिए ये थी अल्लाह के नबी के साथ उनकी लड़ाई। कहते थे हमारे तुम बुज़ुर्गों को गलत कहते हो। कहा मेरा हामी व नासिर वो अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की, वो नेक आदमियों की हिमायत करता है बखिलाफ इसके तुम जिन्हें अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, वो ना तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना खुद अपनी मदद ही के काबिल हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहर तुमको ऐसा नज़र आता है वो तुम्हारी तरफ़ देख रहे हैं मगर फिल वाक़े वो कुछ भी नहीं देखते। ए नबी नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार कीजिए, मारूफ़ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। यानी इखलाक़े हसना पर ये खूबसूरत आयत है। क्या पता चला? सब्र के साथ नेकी और खैर के कामों में लगे रहें। क्या माफ़ कर दें जो आपको कोई अजियत दे? जिन पर बदले का हक हो उसको भी माफ़ कर दें? जिससे दिल दुखी हो उसको माफ़ कर दें? जो तनकीद करे उसको माफ़ कर दें? लेकिन बड़ा मुश्किल है, नफ्स पे पांव रखना पड़ता है, इसीलिए आगे इलाज भी बताया जा रहा है। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए, क्या उकसाता है शैतान? तुम भी बोलो ना, तुम्हें नहीं पता, जवाब दो ज़रा, कोई तुम झूठी हो, तुम्हें भी बातें आती हैं, अंदर से एक उबाल उठता है कि जवाब दो। अल्लाह कहते नहीं, क्या करो? अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं उनका हाल तो ये होता है। अल्लाह में मुत्तकी बना दे। क्या कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर इन्हें छू भी जाता है तो वो फ़ौरन चुकन्ने हो जाते हैं, फिर इन्हें साफ नज़र आने लगता है कि इनके लिए सही तरीक़ाकार क्या है। उकबा बिन आमिर कहते हैं कि अल्लाह के नबी से मिला, मैंने आपका हाथ थाम कर दरख्वास्त की कि मुझे अफसल अमाल बताइए। आपने फरमाया जो तुझसे तोड़े तो इससे भी जोड़। जोड़ते हैं आप भी टूटे हुए रिश्तों से? यहाँ बैठ के नियत करें, लोगों को मना लें, किसी एक रूठे हुए को आज जाके कॉल करें या मनाएं, करेंगे? ये आपका होमवर्क है, किसी एक को मनाएं और चाहे 10 को मना लें आपकी खुशी। फरमाया जो तुझसे रोके इसे दे, जो तुझ पर जुल्म करे इस पर भी रहम कर। सिलसिला है सही हा की रिवायत है ये। फिर फरमाया रहे इनके यानी शैतान के भाई बंद तो वह इन्हें इनकी कजरवी में खींचे चले जाते हैं और इन्हें भटकाने में कोई कसर नहीं रखते। ए नबी जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजज़ा पेश नहीं करते तो वो ये कहते हैं कि तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना मुंतखब कर ली। इनसे कहो मैं तो सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूँ जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। बार बार एक ही पुकार है, वही की पैरवी। क्या ये बसीरत की रोशनियाँ हैं मैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें? करो क्या? वह इज़ा कुरियल कुरआन फस्तमियों लहू वन सितू लाल लकुम तुरहमून। जब कुरआन तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद के तुम पर भी रहमत हो। ऐ नबी अपने रब को सुबह शाम याद किया करो दिल ही दिल में, अज़ारी और खौफ के साथ और ज़ुबान से भी हल्की आवाज़ के साथ। तुम इन लोगों से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं। क्या पता चला कि अल्लाह को पुकारे ایک سفر تھا، اس میں لوگوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہو گئیں، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لوگوں اپنی جانوں پر ترس کھاؤ، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم جسے پکارتے ہو وہ پس سے پست آواز بھی سنتا ہے اور بہت قریب ہے، اور تمہاری سواری کی گردن جتنی تم سے قریب ہے اس سے بھی وہ تم سے زیادہ نزدیک ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 6610۔ تو کیا پتہ چلا اللہ کو پیار سے پکاریں۔ اور آخری آیت، جو فرشتے تمہارے رب کے حضور تقرب کا مقام رکھتے ہیں وہ کبھی اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں آ کر عبادت سے منہ نہیں موڑتے، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے جھکے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اس طرح صفے کیوں نہیں باندھتے جیسے فرشتے اپنے رب کے سامنے صفے باندھتے ہیں؟ وہ پہلے اول صف کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں ذرا سی بھی گنجائش اور جگہ باقی نہیں چھوڑتے۔ یہ مسلم کی روایت ہے، اور یہ پہلا مقام ہے قرآن پاک کا جہاں سجدہ ہے۔ فرض نہیں ہے، کرنا چاہیں کریں، ثواب ہے، نہ کرنے کا گناہ نہیں، پڑھنے والا بھی کر سکتا ہے، سننے والا بھی کرے گا، اور اس کی دعا بھی ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ تبارک اللہ احسن الخالقین، میرے چہرے نے اس ذات کو سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا، جس نے اس کو بنا لیا، اس میں کان اور آنکھیں پیدا کیں اپنی طاقت اور قوت سے، بس بزرگ ہے اللہ، اچھا پیدا کرنے والا۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ کمی بیشی سے درگزر فرمائے۔